भवतामपि भूयातन्मे। यदि श्रद्धदते वचः वैशारदीधि श्रद्धातः स्त्री बालनां च मे यथा भवता तुम लोगों की अपि भी भूया हो सकता है मैं मेरा यदि यदि श्रद्धते तुम विश्वास करो वचः शब्द वैशारदी अत्यंत दक्ष या परमेश्वर के प्रति धीह बुद्धि श्रद्धातः दृढ़ श्रद्धा के कारण स्त्री स्त्रियों के बालानाम बालकों के च भी में मेरा यथा जिस तरह। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बात पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो, भले ही अभी तुम सभी छोटे छोटे बालक हो। इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और यह जान सकती है कि आत्मा क्या है तथा भौतिक पदार्थ क्या है। प्लीज रिपीट। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो मैं भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझा सकते हो, को समझ सकते हो, भले ही अभी तुम सभी छोटे छोटे बालक हो। इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और यह जान सकती है कि आत्मा क्या है तथा भौतिक पदार्थ क्या है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य थोड़ा लंबा है, जितना कर पाएंगे आज कर लेंगे, अगर हो गया तो। प्रहलाद महाराज के ये शब्द परंपरा से चले आने वाले ज्ञान के प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में शिशु रूप में रहते हुए भी नारद के शक्तिशाली उपदेश को सुनकर परम शक्ति के अस्तित्व के विषय में पूर्णतः आश्वस्त थे और समझ गए थे किस प्रकार भक्ति योग द्वारा जीवन सिद्धि प्राप्त की जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक श्री प्रभुपाद इसमें बोलते हैं। इसका अर्थ है जो महापुरुष भगवान तथा गुरु पर अटल श्रद्धा रखते हैं उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आशय स्वतः प्रकट हो जाता है। वैदिक ज्ञान का आशय स्वतः प्रकट होने के लिए क्या चाहिए? भगवान तथा गुरु दोनों पर अटल श्रद्धा। अतः नेक्स्ट संस्कृत श्लोक, एक और श्लोक श्री प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु से 1.2.234, एक दो 234। अतः कृष्ण नामादिन भवेद ग्राहम इंद्रये सेवोन्मुखे ही जिहादो सत्यमेव स्फुरत्यतः। अर्थ, कोई भी व्यक्ति अपनी स्थूल भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान को यथारूप में नहीं समझ सकता, वे भक्तों की दिव्य प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होकर अपने आप को प्रकट करते। उसके बाद एक और श्लोक कोट कर रहे हैं श्री प्रभुपाद तात्पर्य में, भगवद गीता का 18:55, भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यस्य चित् तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदंतरा। मनुष्य परम पुरुष को उनके यथारूप में केवल भक्ति द्वारा समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, और जब वह ऐसी भक्ति से परमेश्वर की पूर्ण चेतना से युक्त होता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इसके आगे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, यह वैदिक आदेश है मनुष्य को गुरु के शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में भी ऐसी ही श्रद्धा होनी चाहिए, तब आत्मा तथा परमात्मा का असली ज्ञान एवं भौतिक पदार्थ तथा आत्मा के मध्य अंतर स्वतः प्रकट हो जाएगा। यह आत्म तत्व या आध्यात्मिक ज्ञान भक्त के अंतस्थल में प्रकट होगा, क्योंकि उसने प्रहलाद महाराज जैसे महाजन के चरण कमलों की शरण ले ली। आत्मतत्व या आध्यात्मिक ज्ञान ने प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों की चरण कमलों में शरण ले ली। इस श्लोक में आगत भूयात् शब्द का अर्थ जो हो सो, भूयात् जो हो सो, जो हो सो मीन्स सो बी इट लिया जा सकता है। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को यह कहकर आशीर्वाद देते हैं, तुम भी मेरे समान श्रद्धावान बनो, प्रामाणिक वैष्णव बनो। प्रत्येक भगवत भक्त यह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, किंतु दुर्भाग्यवश कभी कभी लोगों को परंपरा से चले आ रहे गुरु के शब्दों में प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं होती। अतः वे दिव्य ज्ञान को समझ पाने में अक्षम रह जाते। गुरु को प्रहलाद महाराज की भांति वेद परंपरा की श्रेणी में से होना चाहिए, जिन्होंने नारद से ज्ञान प्राप्त किया। यदि असुरों के पुत्रों अर्थात प्रहलाद महाराज के सहपाठियों को प्रहलाद से सत्य का पाठ सीखना होता तो वे निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान से अवगत हो गए होते। वैशारदी धी शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय बुद्धि को सूचित करने वाले हैं, क्योंकि वे अत्यधिक दक्ष हैं। परमेश्वर ने अपने दक्ष ज्ञान से अद्भुत ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। अत्यंत दक्ष हुए बिना कोई भी परम दक्ष या पटु की दक्ष व्यवस्था को नहीं समझ सकता। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे ब्रह्मा शिव माता लक्ष्मी या कुमारों से चली आ रही परंपरा का प्रमाणिक गुरु मिल जाए तो वह इसे समझ सकता है। ज्ञान तथा आध्यात्म के ये चार संप्रदाय क्रमशः ब्रह्म संप्रदाय रुद्र संप्रदाय श्री श्री संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय कहलाते हैं। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फल मता। ऐसे संप्रदाय या परंपरा से प्राप्त भगवत ज्ञान मनुष्य को प्रबुद्ध कराने वाला है। यदि वह परंपरा मार्ग का अनुसरण नहीं करता तो भगवान को समझ पाना असंभव है। यदि कोई परंपरा में श्रद्धा के साथ भक्ति द्वारा परमेश्वर को समझता है और फिर आगे बढ़ता है तो वह ईश्वर के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम को जागृत करता है, तब जीवन में उसकी सफलता निश्चित। ओ तो आज का शुरू करने से पहले जो कल के भागवतम क्लास में किसी को कोई प्रश्न रह गए थे तो वो पहले पूछ सकते हैं, फिर आज का शुरू करेंगे। किसी के रह गए थे कल के प्रश्न? ओके, सब क्लियर है तो फिर आज का आगे। सबसे पहले जो प्रहलाद महाराज ने कहा है अपने मित्रों को संदेश या उपदेश देते हुए क्या कहा है कि यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो मैं तुम्हें भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। तो सबसे पहली बात, प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए क्या जरूरी है? श्रद्धा। श्रद्धा इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग गॉड और गॉड कॉन्शियसनेस। श्री राधा राधिका रमण की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव देव सुभद्रा की, श्रील प्रभुपाद की। तो श्रद्धा भक्ति के पथ पे, स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म के पथ पे बढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम है। श्रद्धा हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो मंदिर भी नहीं आता और आपको धोती कुर्ता पहने तिलक लगाए जाते हुए देखे विजिबली आपको प्रणाम भी नहीं करे और सर भी नहीं झुकाए, तो भी वो अपनी आंखों में कहीं ना कहीं से वो आपको प्रणाम करके अपनी श्रद्धा का काम पूरा कर रहा है। तो श्रद्धा है लेकिन थोड़ी सी है। श्रद्धा कोई हाँ या ना नहीं होती, श्रद्धा बहुत बड़ा लेवल है। किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास दस है, किसी के पास बीस है। तो जितनी ज़्यादा जिसकी श्रद्धा है उसको उतनी ज़्यादा बात समझ में आती है, और जितनी कम जिसकी श्रद्धा है उसको उतनी कम बात समझ में आती है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद डॉक्टर फ्रॉग का एग्जांपल देते हैं कि डॉक्टर फ्रॉग अपने आप को क्या समझते हैं, पूरी तरह से ज्ञानवान, मैं सबको जानता हूं। क्या जानते हो आप, ये सारे कुएं में कितना पानी है, कहां दीवार है, कहां छेद है, कहां कोई दूसरा कीड़ा रहता है, मैं सबको जानता हूं। बहुत प्राउड है अपनी नॉलेज का। लेकिन जब प्रशांत महासागर से आके एक मेंढक और उसमें गिरा, या जिसने प्रशांत महासागर देखा हुआ था तो उसने बताया कि ये तो बहुत छोटा सा कूप है, मैं जहां से आया हूं बहुत बड़ा जलाशय। ऑफ कोर्स प्रशांत महासागर का दूसरा कोना या दूसरा तट या छोर हमें नहीं दिखता, वो मेंढक को कहां से दिखेगा। तो बहुत बड़ा है लेकिन उसको भी क्या पता कितना बड़ा है। तो डॉक्टर फ्रॉग कह रहे हैं ये कितना बड़ा है। डॉक्टर फ्रॉग ने अपना पेट खोलाना शुरू किया, इतना बड़ा, उतना बड़ा, उतना बड़ा, 10 गुना बड़ा है मेरे कुएं से। और जब पेट फुलाते 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 और दूसरा कहता गया नहीं उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, तो क्या हुआ, डॉक्टर फ्रॉग का पेट फट गया। मीनिंग, अर्थ है उसका कि हम बिना श्रद्धा के भगवान को समझने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही लाइफ बर्बाद हो जाएगी और समझ में नहीं आएंगे, या भगवत ज्ञान समझ में नहीं आएगा, केवल टेक्निकली समझने से बिना श्रद्धा के, जब तक श्रद्धा नहीं हो। और दूसरी बात फिर से कि श्रद्धा ऑन एंड ऑफ नहीं होती, श्रद्धा का लेवल होता है। तो वो श्रद्धा का लेवल कभी भी हमारे जीवन में ऐसा टाइम नहीं आता कि हम उस श्रद्धा के लेवल को और बढ़ा नहीं सकते। कोई हम में से ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरे में तो पूरी श्रद्धा है, नहीं पूरी नहीं है, हमेशा वो श्रद्धा को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने श्रद्धा के लेवल को हमेशा हमें बढ़ाते रहना चाहिए एंड और बढ़ाने की का प्रयास हर समय करते रहना चाहिए, हर रोज करते रहना चाहिए कि हमारी श्रद्धा जो कुछ भी है जितनी भी है वो एनफ नहीं है, वो और बढ़े। श्रद्धा बढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि हम अंधविश्वासी हो जाएं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जितना ज्यादा मैं अंधविश्वासी हो गया समझ लो उतनी ज्यादा वो श्रद्धा बढ़ाने का तरीका नहीं। अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास क्या होता है, छोटी सी सिंपल सी परिभाषा अंधविश्वास की, जो प्रमाणिक ज्ञान नहीं है, प्रमाणिक गुरु के अनुसार, प्रमाणिक शास्त्र के अनुसार नहीं आ रहा, वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास की तरफ हमें नहीं बढ़ना, हमें प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक ज्ञान उसकी तरफ बढ़ के अपनी श्रद्धा को इंक्रीज करते रहना। कि अरे मेरे में कम श्रद्धा थी, अब तो मैंने मंदिर ज्वाइन कर लिया, मेरा तो अब तो पूरी हो गई श्रद्धा, अब तो मुझे सैफ्रॉन पहनना भी अलाउ कर दिया है टेंपल अथॉरिटीज ने, इसका मतलब मेरा तो हो गया। नहीं, नहीं हुआ, अभी भी और की आवश्यकता। जिस दिन सेकंड इनिशिएशन हो जाएगा बस उस दिन तो पूरा हो जाएगा मेरा, नहीं, सेकंड इनिशिएशन भी वो बिगिनिंग है। और जिस दिन मुझे सन्यास का डंडा मिल गया, समझ लो मेरी श्रद्धा पूरी हो गई। नहीं, सन्यास का डंडा मिलने के बाद भी, सन्यास इनिशिएशन के बाद भी एक सन्यासी को भी अपनी श्रद्धा बढ़ाते रहने की आवश्यकता रहती है। ये एक तरीके की बाल्टी है जिसमें नीचे छेद है। जब बाल्टी है जिसमें नीचे थोड़ा सा छेद है, उसमें पानी भरा रह सकता है, नहीं रह सकता? रह सकता। जितना बड़ा उसमें छेद है नीचे से, उससे ज्यादा बड़ी धारा उसमें खुली हो तो छेद को बीट कर जाएगी और उसमें पानी फिर भी पूरी तरह से भरा रहेगा। तो वो ऊपर वाली धारा जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली जो होल जो है वो तो वहां से कुछ ना कुछ निकलना ही है। तो ऊपर से इतना ज्यादा डालते जाओ कि नीचे से निकलने के पश्चात भी बाल्टी या भरी रहे या उसका जो लेवल है वो फिर भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? नीचे से होल क्यों है और वो जाएगा क्यों नहीं? क्योंकि हम एक भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में निवास करते हैं, कलयुग के प्राणी हैं, माया हमारे ऊपर हर समय अटैक करती है, वो कभी छोड़ने वाली नहीं हमें। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब माया कहेगी अच्छा अच्छा चल ठीक है ये छोड़ दो इसको। जब तक हमारा ये भौतिक शरीर है वो माया छोड़ने वाली नहीं। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं अपने लिए कहा है कि माया मुझे भी नहीं छोड़ती है, मुझे भी माया से बच के रहना पड़ता है। अगर श्रील प्रभुपाद को भी ऐसा क्लेम करते हैं तो हमें कहां से छोड़ने वाली माया? श्रील प्रभुपाद तो श्रील प्रभुपाद ही हैं, लेकिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने यह क्लेम किया है। तो अगर वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ रही या चैतन्य महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं, ऑफ कोर्स माया उनके अंतर्गत ही काम करती है, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं तो वो एक भक्त का भाव या एक रियलिटी समझने के लिए बता रहे हैं। कि भक्त को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि अब माया छोड़ गई मुझे, मेरी जितनी श्रद्धा है उतनी बहुत है, अब मुझे और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर? माया कभी नहीं छोड़ेगी, श्रद्धा हमेशा अपने आप से कम होती रहेगी, अनलेस हम उसमें फ्लो और बड़ा खोले रखें। कैसे फ्लो खुलता है? साधना, मॉर्निंग साधना, अटेंडिंग क्लासेस, अंडरस्टैंडिंग फिलॉसफी, हियरिंग इट ओवर अगेन, बार बार सेम बात को सुनते रहना। मैं कोई आज नई बात नहीं कह रहा, आप लोगों ने सब पहले सुना हुआ ही होगा, लेकिन फिर भी कहने से वो बात और ज्यादा समझ में आती। जैसे कि जहां कहीं भी आप जाओ, ये श्रील प्रभुपाद का उदाहरण है, अमेरिका का, यहां भी लगभग ऐसा ही है, जहां कहीं भी आप जाओ कोका कोला वाला ने बोर्ड लगाए हुए ड्रिंक कोक, ड्रिंक कोका कोला, ड्रिंक द रियल थिंग। पता नहीं यहां पे क्या उनके वो है, वहां पे अमेरिका में वो कहते हैं द रियल थिंग, बिकॉज बहुत सारे कोका कोला के कंपेटिटर्स और कॉपीज हैं, तो वो अपने कोका कोला को कोक वाले कहते हैं, ड्रिंक द रियल थिंग. रियल थिंग मीनिंग वो कह रहे हैं कि बाकी सब जो है वो फेक है. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने वो उदाहरण यूज किया भक्तों को समझाने के लिए कि देखो सब जगह 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 ड्रिंक कोक के बोर्ड लगे. क्या हमें नहीं पता कि कोक है? जो पीने वाले हैं उनको क्या ये बोर्ड की आवश्यकता है? नहीं. लेकिन वो फिर भी बार बार उसको एडवर्टाइज, जस्ट इन केस आप कहीं भूल जाओ ये रहा साइन. इधर से बोलोगे तो भी लगा होगा ड्रिंक कोक, उधर से बोलोगे तो भी लगा होगा ड्रिंक कोक. तो ऐसे ही हमारे सब जगह साइन लगे रहने चाहिए, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, या जो कुछ भी हमारी इसमें कॉन्शियसनेस फिलॉसफी. लेकिन सबका सार क्या है? सबका सार है श्रद्धा. जो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें अब श्रद्धा की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा, और कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि बस अनफ हो गई, अब और की जरूरत नहीं है. तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में शिशु रूप में रहते हुए भी नारद के शक्तिशाली उपदेश सुनकर परम शक्ति के अस्तित्व के विषय में पूर्णतः आश्वस्त थे. कितने समय के लिए हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए थे? 100 साल. और इधर से को बता रहा था देवताओं के 100 साल. और कोई देवताओं के 100 साल मतलब हमारे थर्टी सिक्स थाउजेंड ईयर्स. तो एक और इसके बारे में कथा आती है कि हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए और जब उन्होंने भगवान नाम का उच्चारण शुरू किया तो क्योंकि इंद्र को पता था कि ये क्यों तपस्या कर रहा है, इंद्र ने वहां पे अपना एक दूत भेज दिया. किस रूप में? तोते के रूप में. अब हिरण्यकश्यप कहे हरे कृष्ण तो तोता भी कहे हरे कृष्ण. अब हिरण्यकश्यप कहे कृष्ण कृष्ण तोता भी कहे कृष्ण कृष्ण. अब कहे हरे हरे तो तोता भी कहे हरे हरे. हरे राम तोता भी कहे हरे राम. राम राम तोता भी कहे राम राम. तो थोड़ी देर के बाद हिरण्यकश्यप एनॉयड हो गए कि ये क्या, उसको भगाए. अब तपस्या के बीच में है, उसकी हत्या नहीं कर सकते, एंगर मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा पूरी तरह से. शो ऑफ एंगर नहीं हो सकता. ए जा तोता जाए फिर वापस आ जाए. तो हिरण्यकश्यप घर आ गए. घर आके जब कयाधु ने पूछा आप तो गए थे तपस्या के लिए वापस आ गए कि हाँ वहां पे एक तोता बहुत परेशान कर रहा था. क्यों? तोता आपको क्या परेशान कर सकता है? आपको तो कोई शेर भी नहीं परेशान कर सकता. जरा सा तोता वो जानती है अपने पति को कि इसके पास अगर 10 शेर भी इकट्ठे होके आ जाए तो उन पे ये भारी है. जो बड़े सबसे भयंकर खूंखार शेर होंगे उन पे अकेला निहत्ता ही भारी है. तो इसको क्या कोई तोता इसका बिगाड़ सकता है. तो हिरण्यकश्यप ने समझाया कि मुझे कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा, मैं बोलता हूं राम राम वो भी बोलता है राम राम. तो कैदू को यह बात बहुत अच्छी लगी कि पहली बात तो मेरा पति पहली बार कहीं से कोई चीज कहीं से अनसक्सेसफुल घर वापस आया और दूसरा वो भी एक तोते से हार गया और वो भी क्यों, राम नाम की वजह से। तो उसको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो बार बार उसको पूछती, क्या कहता था तोता? राम राम। क्या बोला तोता? राम राम, राम राम बोला तोता। तो दोनों ने साथ में मिलके खूब राम नाम का जप किया और अगले दिन हिरण्यकश्यप वापस तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उस रात प्रह्लाद का बीज रखा गया, प्रह्लाद के प्रह्लाद महाराज माता कयाधु के गर्भ में आ गए। तो अब 36,000 साल के लिए हिरण्यकश्यप चले गए तपस्या के लिए, जब वो वापस आए हैं तो तब प्रह्लाद का जन्म हो रहा और उसके 5 साल तक बाद तक भी वो केवल 5 ही साल के थे। तो ये माता कयाधु का मांगा हुआ एक वरदान कि मैं अपने गर्भ में स्थित शिशु की रक्षा करना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि इंद्र आदि सब देवता उसको अपहरण करके उसके बच्चे को मारना चाहते थे। कि कयाधु को कोई बात नहीं, स्त्री है इसकी हत्या हम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही इसके पुत्र का जन्म होगा उसे हम मार देंगे। पुत्री हो गई कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ दें, पुत्र हुआ तो उसको मार दें। तो बहुत सहमी हुई थी, बहुत घबराई हुई कि मेरे पुत्र को मारना चाहते हैं देवता लोग। तो उसने पहले ही जाके, जब नारद जी ने उसको प्रोटेक्ट किया तो पहले ही उन्होंने आशीर्वाद मांग लिया कि जो मेरा गर्भ है, मेरा शिशु है, मैं इसको सेफ रखना चाहती हूँ। कैसे? मेरे गर्भ में ये सेफ है, इसको वहीं रहने दो, मुझे इसको जन्म ही नहीं देना जब तक मेरे पति तपस्या से वापस नहीं आ जाए। अगर वो जन्म दे देती और पति के वापस आने का वेट करती तो ऑलमोस्ट 36,000 साल के तो ध्रुव महाराज पहले ही हो जाते, ये सब लीला भी नहीं हो पाती। 36,000 साल के पुत्र को कौन कुछ पढ़ाएगा? बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन सतयुग में आम लोगों की उम्र भी 1,00,000 साल हुआ करती थी। 1,00,000 साल, त्रेता में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल और अब कलयुग में 100 अगर कोई जी गया तो। ज्यादा 50 की तरफ जा रही है, वो भी क्योंकि आजकल शांति है, इतने ज्यादा लोग वॉर में नहीं मरते, वॉर में मरने से यंग लोग मर जाते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नीचे आ जाती है, लेकिन जनरली लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल ओनली गो डाउन, कमी कम होगी कलयुग में। तो किसी के 1,00,000 साल की उम्र, उसमें से 36,000 साल अगर वो तपस्या कर भी आए तो क्या, 1,00,000 में से 36,000 घटा है तो वो भी बहुत कुछ बाकी है। हमारी लाइफ में से 36,000 साल घटाया तो बहुत बड़ा माइनस निकलेगा, ऑलमोस्ट पूरा 36,000 ही माइनस निकलेगा। तो क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि 36,000 साल तक प्रह्लाद महाराज ने अपनी माता के गर्भ में स्थित रह के भागवतम का ज्ञान नारद मुनि से प्राप्त किया, 36,000 साल तक, क्योंकि वो तो आश्रम में रहते हैं, रोज भागवतम क्लास अटेंड करनी जरूरी है उनकी माता को। अब माता जाएगी तो शिशु तो जाएगा, उसको कहीं छोड़ के नहीं जा सकती, वो तो गर्भ में ही है, उसको कहां छोड़ के जाएगी। जब कहीं सो गई या कुछ है तो बात दूसरी है, लेकिन अदरवाइज वो शिशु रोज ये भगवत ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी का भी है, उन्होंने भी गर्भ में भगवत ज्ञान प्राप्त किया। और ऐसे ही अभिमन्यु का भी है, अभिमन्यु ने भी गर्भ में ये ज्ञान प्राप्त किया कि किस तरह से चक्रव्यूह में चक्रव्यूह को तोड़ के घुसा जाता है, लेकिन किस तरह से चक्रव्यूह तोड़ के निकला जाता है वो ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? माता सो गई। अब इतना इंटरेस्ट की बात नहीं है माता के लिए कि चक्रव्यूह को तोड़ के कैसे अंदर घुसा जाना है, तो उसके लिए तो ये लोरी हो गई। जब अर्जुन बता रहे हैं कि ये कार्य किस तरह से होगा, वो तो सो गए, उनके सोने की वजह से शिशु भी सो गया। तो ये कोई दो चार भागवतम क्लास का ज्ञान नहीं था ध्रुव महाराज को, 36,000 साल उनकी माता ने आश्रम में रह के भागवतम क्लासेस नारद मुनि की अटेंड करी, और वो सब बाय फोर्स प्रहलाद महाराज को अटेंड करनी पड़ी। इसलिए जब उन्होंने जन्म लिया तो पूरा भगवत ज्ञान पूरा अच्छी तरह से बिल्कुल स्थापित था उनके ब्रेन में, बुद्धि में, और कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। हम कहते हैं हाँ भगवान परम सत्य हैं, ये है वो है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आप सब अपने हृदय से पूछ के देखो क्या पूरी तरह से 100% विश्वास हमें 100% ऑफ द टाइम रहता है। ऑनेस्ट लोग सर हिला रहे हैं, नहीं रहता, कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगा किसको नहीं है, लेकिन मुझे पता है नहीं है किसी को। किसी को है 100% विश्वास भगवान में 100% ऑफ द टाइम, अटूट हर समय? एक को है, थैंक यू। और बाकी ऑनेस्टी के लिए बिकॉज इट्स वेरी टेम्प्टिंग टू से यस यस यस, बट इट्स नॉट ट्रू। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के मन में बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स्ड है कि किस तरह से क्या करना है, और वो उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान को आगे समझा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने ये तीन वर्ड्स कोट किए हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में से, जो महापुरुष भगवान तथा गुरु दोनों पर अटल श्रद्धा रखते हैं उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आशय स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तो जो प्रहलाद महाराज यहां समझा रहे हैं वही श्रील प्रभुपाद दूसरे उदाहरणों से, दूसरे शास्त्रों में से निकाल के वही बात कहां कहां और कंफर्म की गई है वो बता रहे हैं। और उसके आगे भक्ति रसामृत सिंधु में से भी, कोई भी व्यक्ति अपने स्थूल भौतिक इंद्रियों द्वारा कृष्ण को यथारूप में नहीं जान सकता। हमारी स्थूल भौतिक इंद्रियां सक्षम नहीं है भगवान को जानने के लिए, लेकिन भक्त की दिव्य प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान अपने आप को प्रकट करते। किस तरह से हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त हो सकता है? प्रेममयी सेवा से, भगवान की प्रेममयी सेवा से ही हमें भगवान के दर्शन या भगवान प्रकट हो सकते हैं या भगवत ज्ञान, ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्त्या माम अभिजानाति, ये तो सब आप लोग सब जानते ही हो। तो आगे ये वैदिक आदेश हैं, मनुष्य को गुरु के शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में भी ऐसी ही श्रद्धा होनी चाहिए। तब आत्मा तथा परमात्मा का असली ज्ञान एवं भौतिक पदार्थ आत्मा के मध्य अंतर क्या है वो स्वतः प्रकट हो जाता है। किसको नहीं पता कि आत्मा या कोई आध्यात्मिक चीज या भौतिक में अंतर क्या है, किसको नहीं पता? कोई है ऐसा जिसको नहीं पता? इस क्लास में सबको पता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जानने की। क्यों? क्योंकि हमें पता होते हुए भी हम रोज भूलते हैं। कोई ऐसा है यहां जिसको हर समय ये बात याद रहती हो कि ये आध्यात्मिक है या मैं आध्यात्मिक हूं और ये शरीर भौतिक है? हर समय 24 आवर्स अ डे एवरी डे ये भान रहता है किसी को? नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम बार बार इस निष्कर्ष पे स्वतः ही पहुंच जाते हैं कि मैं ये शरीर हूं। ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन ऐसा ही होता है। तो इसलिए जैसे कि कहीं स्लोप बना हुआ है, उसके आसपास कहीं भी पानी डालो, वो उसके अंदर ही अपने आप जाने का स्थान बना ले। तो उसी तरह से उसी को पिटफॉल भी कहते हैं कि पिटफॉल बना हुआ, उसमें हम जाके रोज गिरते हैं, रोज अपने आप को ये समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, इसके अंदर निवास करने वाली आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी उसी पिटफॉल में गिरते हैं और फिर वापस समझ लेते हैं कि हाँ हाँ मैं तो शरीर ही हूँ। लेकिन जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि आई एम नॉट ए मटीरियल बीइंग हैविंग ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ मटीरियल एक्सपीरियंस। दोनों में बहुत सटल डिफरेंस है कि मैं एक भौतिक व्यक्ति नहीं हूं जिसको आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं जिसको भौतिक अनुभव हो रहा है। दोनों बहुत क्लोज है और हम हर समय उसके ऊपर फॉल करते हैं। लगता है आज हम इतना ही बता पाएंगे, इसके आगे का तात्पर्य यहां से कल लिया जा सकता है अगर लेना हो तो। किसे हुए प्रश्न है?
श्रद्धा का एग्जैक्टली मतलब हम क्या समझेंगे कि गुरु और भगवान के प्रति अटूट अनफ्लिंचिंग फेथ, इसकी क्या मतलब होता है इससे एग्जैक्टली, थोड़ा अगर आप थोड़ा और समझा पाए इसको।
ओके, श्रद्धा पहले स्टार्ट होती है भगवान से। तो ये पूरी तरह से फेथ होना कि भगवान हैं, वो हम बार बार बोलते हैं, ये पूरी तरह से फेथ हो रहा कि भगवान है, भगवान हमारे परमपिता परमात्मा है और वो हमारा भला ही चाहते हैं, एंड सो ऑन। देन गुरु में श्रद्धा होना इज दैट गुरु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। भगवान गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, साक्षात हरित्वाइन, और जो उसके बाद ज्ञान, जो ज्ञान दिया गया है उस मामले में गुरु हमारे श्रील प्रभुपाद हैं। तो जो श्रील प्रभुपाद ने ज्ञान दिया हुआ है अपनी पुस्तकों में, उसमें हमारी कितनी श्रद्धा है, उसके लिए श्रील प्रभुपाद ने यह सब सिस्टम शुरू किया कि एवरी मॉर्निंग भागवतम पढ़ो, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य भी पढ़ो, और फिर उसको अपनी तरह से समझाओ और अपनी तरह से समझो। ये नहीं कि छोड़ दो उसको वहीं, हमारे गुरु ने ऐसा कहा, दैट्स इट, आई लीव इट देयर, ऐसा कहा, अब मैं उसके लिए क्या कह सकता हूं। जो गुरु ऑलरेडी कह गए उसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी दे सकता हूं। लेकिन नहीं, श्रील प्रभुपाद ने स्वयं वहां व्यास आश्रम बैठ के अपने शिष्यों से उसके ऊपर टिप्पणी करवाई कि तुम्हें इसको पढ़ के क्या समझ में आता है बताओ, और दूसरों को भी बताओ, उनको भी समझ में आए, उनको भी चांस दो, वो भी अपने रियलाइजेशन क्या भाव आता है मन, वो सब शेयर करें। तो इससे ये सब चीज से धीरे धीरे गुरु के शब्द में, ये गुरु का शब्द ही है जिसमें हमारी श्रद्धा या विश्वास बढ़ता जाए कि हाँ, इसका जो कंक्लूजन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो परफेक्ट है। और अगर कभी किसी को नहीं लगती तो उसके लिए एक व्यक्ति व्यास आसन पर बैठा है उसको ये बताने समझाने के लिए कि ये कैसे परफेक्ट है। अगर आपको नहीं भी लग रही तो मैं आपको शास्त्र के अनुसार कैसे इसको राइट प्रूव कर सकता हूं। दैट इज द जॉब ऑफ द पर्सन हू सिटिंग ऑन द व्यास आसन। I can give an answer all day, but you get the idea. और कोई प्रश्न? Yes? खाली एक एग्जाम्पल है कि जो कुछ भी नाम उसने ब्रह्मा जी की, शिव जी की और गणेश जी की, किसी की भी तपस्या, किसी की भी पूजा करने जाओगे, पहले विष्णु का नाम अवश्य लेना होगा, उसके बिना कोई पूजा शुरू नहीं होती। नेक्स्ट टाइम कोई पंडित जी आएंगे आपके घर हवन कराने तो देख लेना, चाहे वो गणेश जी का हवन कराएंगे, पहले विष्णु का नाम बोलेंगे तभी वो गणेश जी का हवन शुरू होगा। तो दैट फैक्ट इज देयर दैट यू फर्स्ट हैव टू वर्शिप विष्णु नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, देन यू गो वर्शिप व्हाटएवर एल्स। सबसे पहले विष्णु भगवान की का आह्वान किया जाता है, तो ये विष्णु ही है, ठीक है? यस।
श्रद्धा, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट हिज श्रद्धा इज इंप्रूविंग और ही हैज इनफ श्रद्धा?
व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यू कैन गेज योर ओन श्रद्धा? In your own heart, you gauge your own shraddha by, sorry, मैं बार बार इंग्लिश में शुरू करूँ। अपने हृदय में, अपने मन में आप अपनी श्रद्धा को जांच सकते हो, भांप सकते हो कि जब कठिन परिस्थिति आती है, विषम परिस्थिति आती है, तो आप का मन, आपका हृदय उसको किस तरह से डील करता है। क्योंकि टेस्ट संकट में ही हो सकता है, जो नॉर्मल परिस्थिति है उसमें टेस्ट मुश्किल है, जब संकट आता है तब पता चलता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। विषम परिस्थिति, दैट इज द टेस्टिंग मोमेंट। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवताम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद।